ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. భగవాన్ వాచ్య క్యా హోగా, భగవాన్ వాచ్య సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ. దేహ ఔర్ దేహ కే సర్వ సంబంధో కో భూల్, సర్వ ధర్మో కో భూల్, ముజ్ ఏక్ కో యాద్ కరో. యే భగవాన్ కే సివాయ్ ఔర్ కోయి నహీ కహ సక్తా హై. శ్రీ కృష్ణ నహీ కహ సక్తా హై యే, క్యోంకి వో స్వయం దేహ మే హై. తో జో దేహ రహిత హై వీ కహ సక్తా హై కి దేహ ఔర్ దేహ కే సబ్ ధర్మో కో భూల్, ముజ్ ఏక్ కో యాద్ కరో. ఔర్ బాబా కహతే ఇసి సమయ హీ మే ఆకర్ యే కహతా హూం, ద్వాపర్ మే నహీ కహతా హూం. క్యో ఇసి సమయ హీ భగవాన్ కో యే కహనా హోతా హై, క్యోంకి అభీ హీ సమయ హై వాపిస్ ఘర్ జానే కా. తో క్యో బాబా కహతే ముజే యాద్ కరో, మన కో మేరే మే లగాఓ, క్యోంకి అబ్ వాపిస్ ఘర్ జానా హై. పర్ ఆత్మా ఘర్ కైసే జా సక్తీ హై? ఆత్మా పర్ తో అభీ వికారో కీ జంక్ లగీ హుయీ హై. తో సుయీ మ్యాగ్నెట్ పర్ యా చుంబక్ పర్ తబ్ ఆకర్షిత్ హోగీ జబ్ ఉస్మే సే కఠ యా జంక్ నిక్లేగీ. ఔర్ వో కైసే నిక్లేగీ? బాబా కహతే మేరీ యాద్ సే. తో బాబా కీ యాద్ హీ ఏక్ మాత్ర ఉపాయ్ హై ఆత్మా కో పావన్ బన్నే కా. జంక్ జో చఢ్ గయీ హై వికారో కీ, వో నికాల్నే కా, తబ్ ఆత్మా వాపిస్ ఘర్ జా సక్తీ హై. तो बाबा की आज की मुरली इसी पर है. तो जितना जितना हम याद से आत्मा की जंक निकालते जाएंगे, उतना उतना बाबा के नजदीक जाते जाएंगे, और उतना ही फिर बाबा के साथ वापस घर जा सकेंगे. तो यही लक्ष्य रख करके हम बाबा को याद करते हैं, पावन बनते हैं, डबल लाइट बनते हैं, हल्के बनते हैं, ताकि सहज हम उड़ सके बाबा के साथ जाकर परम धाम में पहुंचने लिए. तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य. आज 29/12/2025 है. मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो. बस यही दो काम हमें अभी करने हैं, बाबा को याद करना है और पवित्र बनना है. बी होली बी योगी. मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो. प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? अब बाबा को याद तो करना है, लेकिन क्या करना है उसके लिए ये महीन बुद्धि वाले ही समझ सकेंगे. तो आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह, आत्मा की भेंट सुई से की गई है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक चढ़ती गई है। एकदम से नहीं सारी सुई जंक वाली बन गई, धीरे धीरे जंक चढ़ी। तो धीरे धीरे जंक चढ़ती गई है, अब वो याद में रहने से उतरती जाएगी। जब तक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, जंक उतरी माना आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गई। तो जब तक उतरे जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब तक बाप तब ही बाप की खींच हो। बाबा की खींच कब होगी? कई कहते ना बाबा का प्यार अनुभव नहीं कर होता, क्योंकि बाबा की तरफ वो अभी खींच हुई नहीं है ना। खींच हुई हो तो बाबा का प्यार भी अनुभव हो, मिठरा घुरत घुरे। और क्यों नहीं इतनी खींच हुई है? क्योंकि अभी तक बहुत जंक लगी हुई है आत्मा पर, तो चुंबक पर कैसे खींचेगी? तो बाबा कहते हैं जब तक जब जंक उतरे अर्थात आत्मा सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वो बाप के साथ वापस जा सके। हाँ, तो महीन बुद्धि वाले यही बात समझ सकते हैं। और दूसरा, जितना जंक उतरती जाएगी उतना क्या होगा, दूसरों को समझाने में खींचेगी। दिल होगी बस इनसे हम सुने, क्योंकि वो खींचेगी आत्मा, उनकी जंक उतरी हुई होगी, उसके अंदर से पवित्रता का आकर्षण होगा, तो आत्मा ही भी आकर्षित होगी ना कि हम जरूर इनसे सुने, ये इतनी ऊंची इनकी स्थिति है तो हम इनसे ज्ञान भी सुने। तो जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते हैं। क्यों कईयों का तीर लगता नहीं है और कईयों का तीर तो फटाफट लग जाता है? हमारी दादियां थोड़ा ही सुनाती थी, ज्यादा नहीं सुनाती थी, लेकिन थोड़ा भी जो सुनाती थी ना एकदम असर कर जाता था भाई बहनों पर। और हम लोग तो इतना घंटों घंटों भाषण करे क्या क्या करते थे तो भी इतनी खींच नहीं होती थी, तो अंतर है ना। तो बाबा कहते हैं जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवानुवाच। अब बुद्धि में कौन आया भगवानुवाच शब्द का, तो कौन बुद्धि में आया? वो जो गीता पाठशालाएं आदि है उनको तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय ये है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग। क्या है ये युग का नाम? पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। तोड़ माना छोड़ नहीं देना है, भूलना है। अपने को आत्मा समझो, ये बहुत जरूरी बात है कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है। क्यों जरूरी है? जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि आत्मा पतित बन गई है। देहधारियों को याद करके आत्मा पतित ही बनी ना, क्योंकि देहधारी याद आना माना या तो मोह के वश याद आएंगे, या तो कुछ घृणा के वश याद आएंगे, या तो कोई और आकर्षण होगा, कोई स्वार्थ के वश याद आएंगे तो सब में तो विकार भरे हुए हैं, तो उसे तो नीचे ही उतरेंगे। तो बाबा कहते हैं ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद तो करते आए हैं, याद तो करते आए हैं, तो क्यों पावन नहीं बने? क्योंकि बाबा कहते जानते तो थे नहीं, अब याद केवल करते थे बिना जाने, तो कैसे पावन बने? परंतु जानते तो कुछ नहीं, भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, रात में अंधियारा और दिन में रोशनी होती है, तो दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, संगम पर है कलयुग, दुनिया तो कलयुग में ही है ना। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं, पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठ सकता है कि पावन दुनिया में कोई पतित भी होगा। और जब पतित होते हैं तो पावन का क्वेश्चन ही नहीं, इस समय पावन कोई है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि कोई पावन शायद हो नहीं, और सतयुग में कोई पतित हो वो भी क्वेश्चन ही नहीं, प्रश्न ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है, उठता है, क्वेश्चन ही नहीं परंतु उठता है, क्योंकि पावन कोई नहीं है तो ढूंढते हैं, सतयुग में थोड़ी ढूंढेंगे कोई पतित है क्या। तो बाबा कहते हैं तो जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है कि यहाँ कोई पावन भी तो होंगे, जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं है, पर जब पतित है तो पावन दुनिया याद आती है ना, फर्क हो गया ना। अब पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है, पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया पहला भाग है, वहां कोई पतित हो न सके, जो पावन थे फिर वही पतित बनी है। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं, किन्हों के समझाए जाते हैं? 84 जन्म जो पावन थे फिर पतित बने, जो आए ही पतित दुनिया में उनके लिए तो 84 जन्मों का गायन नहीं होगा ना। तो 84 जन्म भी उन्हों को समझाए जाते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प भक्ति की है वो इतना जल्दी छूट न सके, इसलिए बाबा कहते किसी को भी रोको मत, मना नहीं करो कि भक्ति नहीं करो, वो अपने आप छूट जाए, लेकिन आप मना नहीं करो, तो इतनी जल्दी छूटेगी भी नहीं भक्ति। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। तो मुख्य बात तो बाप कहते हैं देह के सब संबंध भूल, मां में कम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, अब आत्मा को ही पवित्र बनना है, ये समझानी भी बाप ही देते हैं ना, आत्मा को पवित्र बनना है, आत्मा ही पतित बनी है। हम पहले क्या समझते थे, आत्मा तो कभी पतित बनती नहीं है, तो बाबा समझाते नहीं बच्चे आत्मा ही तो पतित बनी है, उनको ही पावन बनना है। ये समझानी भी बाप ही देते हैं, क्योंकि ये बाप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ना स्कूल का, प्रिंसिपल तो वो है, बाकी मास्टर्स हेडमास्टर्स कई होंगे, पर प्रिंसिपल तो एक ही है शिव बाबा। तो प्रिंसिपल भी है, सोनार भी है, बैरिस्टर भी है, सब कुछ है। ये नाम वहां रहेंगे नहीं, सतयुग में कोई नहीं ऐसा नाम होगा, डॉक्टर बैरिस्टर सोनार तो होंगे ना, सोनार तो होंगे, क्योंकि सोने को कैसे उसके जेवर बनानी है, तो सोनार तो होंगे। अब बाबा कहते ये नाम वहां रहेंगे नहीं, वहां ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी, हाँ, इस प्रकार से टीचर नहीं होंगे जैसे यहाँ बाबा ने बनाए हैं जो ज्ञान देवे, वहां ऐसे टीचर तो होंगे भी नहीं। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने लिए, दुनिया में भी क्यों टीचिंग करते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, ताकि जिनको पढ़ाए वो फिर नौकरी कर सके। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए, आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, फीमेल को पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। अभी ये सब बाद में सीखी है। क्यों फीमेल को पढ़ने की जरूरत नहीं थी पहले? क्योंकि धन की तो कोई कमी नहीं थी, सतयुग में तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं होगी। अभी तो पढ़ना पड़ता है क्योंकि पति शरीर छोड़ दे तो पत्नी को कमाना पड़ता है। सतयुग में तो पति पहले शरीर छोड़ेगा ही नहीं, और धन की भी कोई कमी नहीं होगी। तो बाबा कहते यहाँ आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी है। पर सतयुग में तो फीमेल भी जाती होगी ना, श्री कृष्ण पढ़ने जाता होगा तो क्या राधे पढ़ने नहीं जाती होगी? हाँ, वो भी तो पढ़ती होगी। हाँ, वहां तो दोनों बराबर है। पर द्वापर के बाद फीमेल्स का थोड़ा कम हुआ, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज हो गया तो स्त्रियों को कहते थे क्यों तुमको पढ़ना है, क्यों तुमको बाहर निकलना है घर से, तो हाँ तुमको तो घर में ही चूल्हा ही जलाना है, रोटियां ही पकानी है, तो तुमको दुनिया में क्यों जाकर के पढ़ना है। तो बाबा कहते आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए पत्नी को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ता है पति मर गया तो। इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। स्त्री को चिंतन करना पड़ेगा क्या सतयुग में मेरा पति मर जाए तो कौन मेरा पेट भरेगा? नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, जरूरत पड़ेगी तो आप हम धन होगा तो हम जी सकेंगे। वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं आएंगे कि धन इकट्ठा करना है, जो चिंता भी करनी पड़े भविष्य के लिए। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं, स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती है, यहाँ तो बंजर जमीन हो जाती है। जमीन भी देखो कलराठी बंजर बन जाती है, उपज भी देखो कितनी कम हो गई, पहले तो कितनी होती होगी। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वो ताकत नहीं होती, वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में भी रात दिन का फर्क है। वहां तो हर फूल से सुगंध आएगी, यहाँ तो देखो अभी तो नकली ऐसे फूल बनाए हैं, भले कहेंगे रोज फ्लावर है लेकिन सुगंध नहीं। हाँ, ऐसे भी है ना। तो बाबा कहते वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं परंतु ताकत निकलती जाती है, न बीज में ताकत है न धरनी में ताकत है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए फिर खाद डालनी पड़ती है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, फिर वो ये कीटनाशक दवाइयां डालनी पड़ती है, तो ये नुकसान तो करती है ना ये अनाज को। परंतु हमने देखा हमारे ग्राम विकास वाले कैसे योगिक खेती करते हैं, और योगिक खेती में कोई प्रकार का कीटनाशक नहीं, कुछ नहीं, और इतनी उपज होती है, इतनी फसल सुंदर बनती है, क्योंकि योग की शक्ति से वो फसल उगती है, तो उसमें ताकत भी बहुत होती है। तो इसीलिए आजकल तो कहेंगे ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, हाँ तो ऑर्गेनिक का महत्व ज्यादा हो गया है। तो बाबा कहते हैं धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है, यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है, कोई चीज में ताकत ही नहीं रही है। ये फर्क भी अभी तुम समझते हो, सत्युग में क्या था कलयुग में क्या है, ये फर्क बाबा कहते अभी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो वो तो ध्यान में ही देखते हो, वहां पता चल जाता है ध्यान में कैसा सतो प्रधान है, और यहाँ देखो तमो प्रधान है। वहां के फूल आदि भी कितने अच्छे होते हैं, हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। थोड़ा बहुत तो देखते ना, योगी खेती होती है जाके देखते हैं तो क्या सुंदर फसल निकलती है, तो कोई सतयुग का नजारा कुछ होगा ना उसमें भी। तो बाबा कहते हैं वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए, हो सकता है बुद्धि से समझ सकते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती नहीं है, इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। हाँ बाबा कहते बात मत पूछो, गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए। अभी तो लाखों साल है कलयुग अंत में, तो गपोड़ा मारते ना तो इसलिए अंधियारे, अज्ञान अंधियारे में सोए हुए हैं। तुम बताते हो कि बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं, ये उस समय की बात, हंसी करते थे। आप लोग कहते हो विनाश आएगा विनाश आएगा, विनाश तो आता नहीं, लेकिन अभी नहीं कहते, अभी तो खुद ही पूछते हैं कब आप लोगों के अनुसार कब होगा विनाश। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं, रियलिटी में तो वो समझते हैं जो अपने को, रियलिटी में तो वो समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं, हम समझते हैं कि विनाश होना है, बाकी दुनिया वाले थोड़े उस समय समझते थे। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना, या जो कुछ भी सिखाया जाता है सब नई भाषा रूहानी पढ़ाई। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे ही जानते हो, वो लोग तो जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने? वो कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, पर उन्हों को किसने ये योग सिखलाया? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया उनको, बाप तो सिखलाते ही हैं रूहानी बच्चों को। क्या सिखलाते हैं? हाँ, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल नॉलेज बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों को सिखलाते हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो, ब्राह्मण बनेंगे भी वो, कौन बनेंगे ब्राह्मण? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो, दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे, इतने धर्म इतनी भाषाएं इतनी जातियां न जाने क्या क्या इस कलयुग की दुनिया में, सतयुग में ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को अभी तुमने जाना है तो भाषाओं को भी तुम जान सकते हो। भाषाएं कितनी होगी कि ये सब रहेंगे नहीं, इतने सब शांति धाम में चले जाएंगे, सब भाषाओं वाले शांति धाम में चले जाएंगे, एक ही भाषा रहेगी, इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है तो तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपिनियन भी इसीलिए लिखाते हैं, क्यों लिखाते हैं बड़े आदमियों से ओपिनियन? क्योंकि वो नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा, फिर उनका अखबार में डालेंगे, वो डालेंगे लोग कि भाई इस नामी ग्रामी ने ब्रह्मा कुमारियों के लिए ये कहा है, आवाज फैलेगा, वाह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपिनियन ओपनिंग की, आते हैं ना, प्रेसिडेंट भी आती है और प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, तो इन्होंने ओपनिंग की, ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे, ब्रह्मा बाबा कहीं चला जाए तो थोड़ी मनुष्य समझेंगे या अखबारों में डालेंगे, कुछ भी नहीं, पर राष्ट्रपति जाएंगे या प्रधानमंत्री जाएगा तो बहुत अखबारों में सब आ जाता है। ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे कि परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे ही नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि जाएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे, होता है ना, राष्ट्रपति आती है तो देखो गवर्नर भी आएगा, मिनिस्टर्स भी आएंगे, सारे उनके जो भी है सब आएंगे, उनके पीछे और भी भागेंगे, इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। ब्रह्मा बाबा कहाँ जाएंगे तो कौन इनके पीछे भागेंगे। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, बाबा तो कहते ही थे, बाबा कहीं जाते थे तो बाबा कहते थे बच्चे इतनी भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लाइट प्लेन में तो जाते नहीं थे, ट्रेन में बाबा जाते थे तो स्टेशन पर तो बच्चे बहुत आते थे तो बाबा मना करते थे, बच्चे फूल मालाएं गुलदस्ता ये सब मत लाओ, खर्चा मत करो, बाबा तो गुप्त है, बाबा गुप्त ही रहेंगे, इसीलिए ये सब जरूरत ही नहीं है, तो बाबा को पसंद ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे, अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे, तुरंत मधुबन आ जाए बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था, अब किसी जिज्ञासु ने कोई टीचर को कहा, एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया है हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं। उस स्टूडेंट को अच्छा लगा ज्ञान, तो उसने कहा कि आपको जिसने सिखाया है हम क्यों ना डायरेक्ट उनके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। अब वो समझो आएगा भी, लेकिन अभी सुई पर तो बहुत जंक लगी हुई है तो ब्रह्मा बाबा पर इतना आकर्षित तो होंगे नहीं। तो जिसने तुम, तो बाबा कहते हैं परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो, कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं, सारी कट उतर जाए वो तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे, जब ऐसे बनेंगे पिछाड़ी में, फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे, सारी जंक उतर गई तो फिर बाबा कहते तुम बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना है, चिंता है ना किस बात की, कि हम तमो प्रधान है, हमारे ऊपर कट चढ़ी हुई है, तो जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी, कट चढ़ी हुई भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, द्वापुर से धीरे 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 जंग चढ़ती गई आत्मा पर, तो उतरेगी भी तो धीरे धीरे, फिर उतरेगी भी ऐसे जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है, तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती का कट उतरी है कोई की कम, जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वो दूसरे को समझाने में खींचेंगे, वो जब बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, आकर्षित होंगे, जितनी हमारी कट उतरी हुई होगी उतना वो दूसरे को समझाने में खींचेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है तो समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है, आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि बनेंगे, जब यज्ञ में थे तब थोड़ी किसको मालूम होगा कि ऐसे कोई हम प्रदर्शनियां निकालेंगे, म्यूजियम बनाएंगे, ऐसे सेंटर खोलेंगे, कुछ भी नहीं, बस बाबा कहते थे बच्चे साथ रहेंगे साथ चलेंगे, तो बच्चों ने ये समझा बस ऐसे इस बाबा के साथ ही रहेंगे और साथ घर चले जाएंगे। हाँ, इतना सब इतनी सब सेवा होगी, ये तो उस समय तो किसने सोचा भी नहीं होगा यज्ञ में। तो बाबा कहते हैं आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि बनाएंगे, आगे चल हो सकता है और भी कुछ निकले। अभी तो टीवी के द्वारा अभी क्या नहीं आजकल मीडिया के माध्यम से कैसे सेवाएं बढ़ रही है। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। हार्ट फेल होना माना दिल शिकस्त भी नहीं होना है, बाबा सेवा नहीं हो रही है, लोग सुनते नहीं, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। धारणा तो बहुत ऊंची करनी है ना, पर नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी, विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सत्युग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, धीरे धीरे नीचे तो उतरते हैं ना, तो बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है। अब तो यही बताते हैं ना, सत्युग से त्रेता तक आए तो एक एक कदम नीचे उतरते हैं, लेकिन द्वापुर में जैसे आए तो उतरते नहीं है, गिरते हैं। अब गिरना जब होता है फटफट फटफट ना सीढ़ियां एकदम फट से नीचे गिर जाते हैं, और उतरते हैं तो एक एक सीढ़ी उतरते हैं। तो बाबा कहते हैं विकार सत्युग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी ये गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानियां है ना, निर्विकारी वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। तो बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, अभी निशानियां रही हुई है। ये देवी देवताओं के चित्र मूर्तियां ये सब क्या है, ये निशानियां हैं कि देवी देवता धर्म था। सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है, देवी देवताओं के चित्र ये सबसे अच्छी निशानी है देवताओं की। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो। प्रभात फेरी निकालते थे लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर, परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम ये बनते हो ना, रावण राज्य का विनाश राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य, ये रावण राज्य, और ये संगम है बीच में। तो राम राज्य उस तरफ, ये रावण राज्य, बीच में संगम, ढेर की ढेर पॉइंट्स है। अब बाबा ने कैसे भाषण करना है वो सिखाया, ढेर की ढेर पॉइंट्स है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स है। कानून की कितनी पॉइंट्स बैरिस्टर की वकील की बुद्धि में होगी, और डॉक्टर की बुद्धि में कितनी दवाइयां होगी। तो बाबा कहते हैं ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। अभी तुम्हारे तुम भी तो रूहानी डॉक्टर हो, रूहानी वकालत तो करते हो ना, ज्ञान देते हो, समझाते हो, तो तुम्हारे पास भी कितनी पॉइंट्स होनी चाहिए। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है, अलग अलग टॉपिक्स का किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो, ऐसे भाषण करो, हर एक टॉपिक पर कुछ लिखो, तो वो लिखो, और फिर जब भाषण करना उस टॉपिक पर तो आपके पास अच्छी लिखत होगी, तो सहज होगा भाषण करना। श्रूर बुद्धि वाले झट देख लेंगे, पहले तो लिखना चाहिए हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, अगर ये समझाते होते तो अच्छा होता, ये भूल गए ये भूल गए। तो बाबा कहते पहले लिखो, पहले तो लिखना चाहिए हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी, टॉपिक्स की लिस्ट भी बनी हुई हो। फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना चाहिए, अंदर में भाषण करना चाहिए। पहले मुझे याद है जब बाबा ने ये मुरली चलाई थी तो हम भी अंदर में कैसे भाषण तैयार करते थे। उस समय टेप मशीन तो आ गई थी, तो हम भाषण करते थे टेप में भरते थे, फिर टेप में भर करके फिर सुनते थे, फिर कहाँ पर रेपिटिशन हुआ, कहाँ क्या हुआ, सब से समझ जाते थे, फिर ऐसे तैयार करते थे। तो भाषण ऐसे तैयार करने होते हैं। तो बाबा कहते हैं भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था, ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी, टॉपिक्स की लिस्ट भी बनी हुई है, फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी है, जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। भाषण करने की तैयारी करनी है। बाप तो समझते हैं ना ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, भरपूर हो जाएंगे ज्ञान की पॉइंट से भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा, दिल होगी हम सुनाएं दूसरों को सुनाएं। हाँ, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो गया, तो भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ कहाँ से दो चार, कहाँ से छह आठ निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है, हजारों ने देखा और निकले कितने थोड़े, इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का देखो क्या हाल है, सबकी हालत देखो कितना टेंशन है सब में, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वो भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है जांच करनी है, किसको ये नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हो, बाबा के भक्त शिव के भक्त जल्दी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ कि भगवान ऊंचते ऊंच कोई कहा जाता है वो है निराकार, कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आ गई है, सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, है ना, शादी नहीं किए हुई है अभी कुआरे ही है और सन्यासी बन जाते हैं, कोई ब्रह्मचारी चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं, जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है, इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे, शादी की तो मायके वाले भी याद, तो ससुराल वाले भी याद, तो फिर लोग नंबर बढ़ जाता है ना याद जिस किसको करना है। तो बाबा कहते शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त, इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे, शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे, टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त फिर नहीं होते क्योंकि बंधन आ गया ना शादी की। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है ना, सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे फिर सन्यास किया, अब तुम्हारा है बड़ा सन्यास, वो गृहस्थी थे गृहस्थी होते फिर सन्यास किया, पर केवल घर बार का सन्यास किया ना, पत्नी को छोड़ा बच्चों को छोड़ा, अब हमारा बेहद का सन्यास बड़ा सन्यास है। हमारा बड़ा सन्यास कैसे है, कुछ भी छोड़ते नहीं है परंतु सब कुछ भूलते, ये है बड़ा सन्यास। तो बाबा कहते तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसीलिए मेहनत होती है। वो सन्यासी भभूति आदि लगाते हैं, बाल उतारते हैं, वेश बदलते हैं, तुम्हें तो ऐसे करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है, तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। हाँ, लेकिन टीचर्स बहने तो पहनेगी ना सफेद, क्योंकि ये हमारा यूनिफॉर्म है और हम 24 घंटा ऑन ड्यूटी, तो जब ऑन ड्यूटी होते हैं तो फिर उसी अनुसार ड्रेस पहनते हैं, बाकी जो परिवारों में रहते हैं उनके लिए तो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ उनका मिलना जुलना लौकिक में होता है तो जरूरी नहीं है कि उनको सफेद ही पहनना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है, तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं, ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापस तो सबको जाना है, कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई योग बल से पावन बन करके जाएंगे और कोई सजा खा करके वापस जाएंगे। तो तुम बच्चों को जंक उतारने की मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाबा की याद को क्या कहते हैं, योग अग्नि। तो इसको योग अग्नि भी कहते हैं, अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं, बहुत प्रकार की चिताएं हैं ना, काम की भी चिता है और चिंता की भी चिता है, वो भी चिता है, क्रोध की भी बहुत बड़ी चिता है, ये सब चिता में जलते हैं। तो बाबा कहते हैं काम चिता को भी अग्नि कहते हैं, काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। अब बाप कहते हैं गोरा बनो, ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती, ये बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं ये तो शास्त्रों को मानते ही नहीं है, ब्रह्मा कुमारियों के लिए क्या कही कहते, ये तो शास्त्रों को मानते ही नहीं है, ये तो नास्तिक बन पड़े हैं। तो बाबा कहते उनको बोलो, जो ऐसे कहते ना उनको बोलो कि शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है, अब ज्ञान दिया है तो फिर जरूरत नहीं है, सारा सार भगवान ने बता दिया है शास्त्रों का। ज्ञान से सदगति होती है, तो भगवान उवाच, वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते हैं, ये गीता में साफ शब्द है। मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होती है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं भगवान उवाच है कि वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाप ही आकर के लायक बनाते हैं, आत्मा पर जंक चढ़ जाती है तब बाप को बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनना है, हाँ एकदम से तो नहीं बन जाएगी ना सतो प्रधान, तमो प्रधान से धीरे धीरे तमो तक आते हैं, फिर तमो से रजो तक आते हैं, रजो से फिर सतो तक आते हैं, फिर सतो प्रधान स्टेजेस है, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई, अगर बीच में गड़बड़ हुई इस उसमें जाते जाते तमो प्रधान से चलो रजो तक आ गए और रजो तक आए और फिर गड़बड़ हो गई, फिर कोई विकार के वश हुए तो फिर तमो प्रधान बन जाएंगे, यहाँ गिर जाएंगे। ये सांप और सीढ़ी का चित्र है ना, वो सांप ऊपर तक भी है, वो ऊपर जैसे पहुंचे अभी 100 के थोड़ा करीब है और वो सांप एकदम नीचे गिरा देता है। तो बाबा कहते हैं अगर बीच में गड़बड़ हुई तो फिर कट चढ़ जाएगी। तो बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो भी तो खुशी रहनी चाहिए ना, हम कितना ऊंच बन रहे हैं। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना, हाँ बच्चों को विलायत भेजते हैं पढ़ने के लिए, कितना खर्चा करते हैं, कर्जा लेकर भी बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने लिए। तो विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना, अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं, जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। सुना बाबा इतना प्यार देते हैं लेकिन फिर कई बच्चे सामना करते हैं, लौकिक में भी ऐसे होता है, पिता कितना प्यार देता है बच्चे को और बेटा देखो सामना करता है अपने पिता का। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे याद में रहेंगे वो अच्छा पद पाएंगे, सैपलिंग तो भारत से ही लगती है ना, बाबा तो भारत में आए तो सैपलिंग नहीं झाड़ की भारत से लगती है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से भी तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती है, वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। मीडिया वाले भी क्या करेंगे, पत्रकार होते ना वह, जो सुना या जो देखा ऊपर से वो उसको लिख देंगे, तो सुनी सुनाई पर चलते हैं ना, जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको पर मत कहा जाता है। इसीलिए जब हम मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें उनको समझाते हैं, ऐसे ही नहीं बस किसने कह दिया आप लिख दो, परंतु सोच समझ कर लिखो कि वास्तविकता क्या है और क्या समाज का इससे कल्याण होगा, वो भी साथ में सोचो। ऐसे नहीं बस जो आया सो लिख दिया, समाज का सोचा ही नहीं कि वो पढ़ेंगे तो क्या उनके ऊपर असर होगा। तो बाबा कहते हैं, हाँ उस पर मैं एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार यहाँ आए थे कुछ पत्रकार इंदौर से, बहुत बड़ा तो आया था, तो अभी उसको बहुत अच्छा लगा और यहाँ से गया। तो फिर क्या है, बहनें उनसे मिलने के लिए गई और उनको समाचार दिया कि आप अखबार में डालो हम लोगों ने कैसे राखी रक्षाबंधन पर ऐसे कैदियों को राखी बांधी। तो सारा समाचार उनको दिया, तो उसने हेडिंग में लिख दिया कहा ब्रह्मा कुमारियां कैदियों को राखी बांधने गई, जेल में कैदियों को राखी बांधने गई। अब ठीक है वो तो कईयों ने पढ़ लिया, फिर दूसरे सेंटर वाले भी गए कि हमारा भी डालो, अब एक का तो डाला ही था, फिर उसने क्या हेडिंग बना ली, ब्रह्मा कुमारियां जेल में गई, ब्रह्मा कुमारियां जेल में गई। अरे वो लोगों ने पढ़ लिया, तो हेडिंग ही पढ़ते हैं पूरा, नीचे से तो पढ़ते नहीं है तो, और क्या लिखत है वो तो पढ़ते नहीं है, तो जेल में गई। तो उस एडिटर के पास गए कि आपने तो ये क्या लिख दिया जेल में गई, क्योंकि लोगों के फोन आने लगे, अरे आप लोग जेल में क्यों गए। तो फिर कहा कि हम लोग जेल में राखी बांधने के लिए गए थे कैदियों को। तो कहा वो क्यों नहीं लिखा, तो कहा कल भी तो लिखा था किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन आज जो लिखा था जेल में गई तो सबने पढ़ा होगा, क्योंकि अंदर तो लिखत तो अच्छी है ना, जेल में कैदियों को राखी बांधने गई। तो देखो कई फिर इतनी होशियारी से हेडिंग बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना, जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको पर मत कहा जाता है। पर मत आसुरी मत हो गई, पर मत माना आसुरी मत, बाप की है श्री मत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है, यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो ये है तुम्हारी नंबर वन सेवा। मन वचन कर्म तन मन धन से जो भी सेवा करते हो ये है नंबर वन सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना, बाबा के साथ हम कर्तव्य कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा ने धारणा के लिए आज मुख्य सार दिया है, एक आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी है उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देख करके ज्ञान देना है, बहुत श्रूर यानी तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए क्या करो? बहुत दुख है ना दुनिया में, तो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। तो ऐसे समय पर साक्षी और बेहद के वैरागी बनना है। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। बाबा ने बता दिया ये सब होना ही है। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। साक्षी होकर देखना माना बेहद का वैरागी बनना। स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। केवल वाणी से सेवा करने से धरनी तैयार नहीं होगी, वृत्ति से भी तैयार करो। इतना योग लगाओ पहले तो वृत्ति से तैयारी होगी तो लोग आएंगे खींचे हुए। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ में जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है, कोई मशीन होती इसको सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट कर दो जो फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नीचे से भी बहुत सारे भाई बहने यहाँ देखा, भागते आ रहे थे। जो नीचे से आए हैं वो सब हाथ उठाओ, देखो कितने सारे नीचे से आए। अभी तो दिल्ली और आगरा का टर्न है और गुजरात का वो मिलन का टर्न है, तो इसलिए तो आप सबका नाश्ता भोजन दिन का रात का सब बड़े डाइनिंग हॉल में होगा। ऊपर के डाइनिंग हॉल में सब जाएंगे, नीचे नहीं है। ये आपके ध्यान पर रहे। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, फिर जो डबल विदेशी भाई बहने हैं वो बैठे रहेंगे, बाकी सब उठेंगे याद के बाद।